बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम किस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिताश्री बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा ने आज बहुत हम बच्चों से वायदे कराए हैं। कभी बाबा हमें समझाते हैं, कभी बाबा श्रीमत देते हैं, कभी बाबा आज्ञा करते हैं, कभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, और आज बाबा ने वायदे कराए हैं। क्या वायदा कराया है बाबा ने, वो हम मुरली से सुनेंगे। और वायदा माना उस पर पूरा अमल करना। अगर किसी से वायदा किया और फिर वो अमल में नहीं लाया तो क्या कहेंगे? वायदा को निभाया नहीं तो फिर तो बहुत बड़ी सजा होगी। तो बाबा भी हमसे वायदे कराते हैं, तो अपने आप से पूछना कि वो वायदा हमने जो बाबा को दिया है, हम उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। तो आज की बाबा की मुरली पूरी धारणा युक्त मुरली है, अपने अंदर सोचने की भी मुरली है, धारण करने की भी मुरली है, और वायदा करने की भी मुरली है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6/8/2026 है। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो। अब क्या वायदा करो? अपने आप से, बाबा से वायदा तो है लेकिन अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या वायदा करो अपने आप से कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। दूसरा वायदा क्या करो? हमको सबको सुख देना है। ये भी वायदा करो अपने आप से। तीसरा वायदा क्या करो? प्यार की दृष्टि से देखना है, वासना की दृष्टि नहीं, प्यार, आत्मिक प्यार। तो आत्मिक प्यार की दृष्टि से देखना है। चौथा, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ये चार वायदे आज बाबा ने करवाए हैं। बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, प्यार की दृष्टि से देना है। प्यार की दृष्टि माना मुस्कुराकर मिलना है, है ना? आत्मिक स्नेह की दृष्टि माना मुस्कुराकर मिलना है, और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो सारी मुरली इसी पर है, पूरी धारणा युक्त मुरली है। हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? क्योंकि ये सारे वायदे तब निभा सकेंगे जब हमारा पूरा योग होगा बाबा से। अगर बाबा से पूरा योग नहीं है तो ये वायदे कैसे निभाएंगे? इसलिए प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? क्या प्राप्ति होती है? बाबा को याद करते हैं, योग में रहते हैं, तो उसकी सिद्धि क्या है, प्राप्ति क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। किसको कहेंगे पक्का योगी? उत्तर है, और भी वायदे हैं ना इसमें, उत्तर है, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। योगी किसको कहेंगे? जिसका अंग अंग शीतल है। ये है योग की सिद्धि, जिसकी सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए। पक्के योगी बच्चे वो हैं जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल न हो। तो ये देखना है अपने अंदर, मेरी कोई भी कर्म इंद्री चंचल तो नहीं है। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे, नाम रूप की बीमारी बिल्कुल न हो। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे, मीठे बच्चे, अब और बड़ी बात, मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं। कई अपने आप को जवान समझते, मैं तो जवान हूँ। बाबा कहते नहीं, बाबा के बच्चे बने तो कभी अपने आप को ऐसे जवान समझ करके अभिमान नहीं दिखाना है। समझते ना, जवान हो, न्यू ब्लड है, तो हम बहुत शक्ति है हमारे अंदर। लेकिन तुम बच्चे अभी जवान नहीं, तुम्हारी तो वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, ये समझो। तो वानप्रस्थ अवस्था है तो वो जवानी का जोश, गुस्सा वो तो नहीं दिखाएंगे ना। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या इसका अर्थ है? जाग सजनिया जाग, भगवान साजन हम सजनियों को जगाने आए हैं। किन किन बातों में जगाने आए हैं? जिनमें हम सोए हुए थे। तो बाबा कहते हैं इसका, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना चाहिए और फिर खुशी में आना चाहिए। विचार सागर मंथन करके खुशी में आना चाहिए, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। नई दुनिया के लिए नई बातें, ये नई बातें अभी तुम सुनते हो, संगम पर ही सुनते हो। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। तुम जब ये बातें सुनते हो, ये कहा चिड़ियाएं चू चू इतना जोर से कर रही। हाँ, बाबा को ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं। एक तरफ बाबा कहते ये नई बातें हैं, फिर बाबा कहते ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, क्योंकि आपने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। फिर तुम नए सिर सुनते हो, पहले भी सुनी थी, फिर नए सिर भी अभी सुनते हो। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। नई करके सुनाते हैं वही बातें, कल पहले भी सुनाई थी लेकिन भूल गए, तो फिर अभी नई बातें हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने लिए, ताकि ये बच्चे नई बातें सुने और नई दुनिया का वर्षा पाए। अब इसमें ज्ञान डांस करना होता है। ज्ञान इतना बाबा देते हैं तो ज्ञान डांस करना होता है, विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, अब वो तो स्थूल डांस करते हैं, ज्ञान डांस तो नहीं करते ना। वहाँ भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, अब उसमें तो फिर भी मेहनत है, थक भी जाएंगे। ज्ञान का डांस करने में कोई मेहनत नहीं है, थकने की बात ही नहीं है। उसमें तो कर्म इंद्रियां बहुत चलती है, भक्ति मार्ग के डांस में कर्म इंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। और यहां तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है, बाहर से कुछ नहीं, अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो नॉलेज बुद्धि में है। अब इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ज्ञान डांस करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने जितना ज्ञान दिया है, मनन चिंतन मंथन करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाकी तकलीफ किस में है? बाबा कहते हैं हाँ, याद में मेहनत लगती है, क्योंकि माया आती है। ज्ञान डांस करने में कोई माया नहीं आती है, बुद्धि अगर बहुत शक्तिशाली है तो खूब ज्ञान डांस कर लेते अंदर ही अंदर। तो बाबा कहते याद में मेहनत लगती है, बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं याद में, कहां न कहां गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है किसमें गिरते हैं, सबसे मुख्य बात किसमें गिरते हैं, नाम रूप में फंसने में, नाम रूप में फंस जाते हैं, देहधारियों के आकर्षण में आ जाते हैं। तो नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। क्रोध में कोई नाम रूप में फंसने की बात नहीं है, परंतु काम विकार में नाम रूप में फंसते हैं। पहले पहले है ये जिसकी बड़ी संभाल करनी है, काम विकार बहुत संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा, अब नाम रूप में नहीं फंसे उसके लिए क्या बुद्धि में रखना है, हम आत्मा हैं। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर के जाना है। उस शरीर का, इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, बहुत खराब बीमारी है नाम रूप में फंसने की। तो बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते ही नहीं है। अगर उनको कहो ना कि तुम उसके नाम रूप में फंस गए हो तो और ही गुस्से हो जाते, कहा मैं नाम रूप में फंसा हूं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते ही नहीं है, कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते हैं कि तुम नाम रूप में फंसे हो। परंतु ये नाम रूप में फंसना, बाबा ने इसको क्या नाम दिया है, गुप्त बीमारी। खुद को ही नहीं पता चलता है कि मैं किसके नाम रूप में फंसा हूं, ये है गुप्त बीमारी, गुप्त बीमारी। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं, आत्मा की ज्योति बुझ गई है, वो ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनके आगे ज्योति जगाते हैं ना, डेड बॉडी के आगे ज्योति रखते हैं, ज्योति जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल भी करते हैं कि कहीं बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो जाए। तो समझते हैं ये दीपक उस आत्मा को प्रकाशित करेगा, तो आत्मा के आगे अंधियारा न हो जाए, भटक न जाए, तो यहाँ दीपक जलाते हैं। आत्मा को अंधियारा न हो, वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें। अब आत्मा खुद ही ज्योति है, उसको कोई स्थूल ज्योति की भी क्या दरकार है, पर भक्ति मार्ग में करते हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है, वो रुकती है क्या कि कोई दीपक मेरे आगे जगाए फिर मैं जाऊं? आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजी लोग खास उनके मंदिरों में जाएंगे, ब्रह्म समाजियों के मंदिरों में एक ज्योति जगती रहती है 24 घंटा, रात को भी। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, वहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता होगा, मानो 24 घंटा ग्रत उसमें पड़ता रहे तो कितना ग्रत भी यूज होता होगा, कितना खर्चा होता है। फालतू ग्रत जाता है, हवा को लगता है ना, फालतू ग्रत जाता है। यहाँ वो कुछ भी डालने का है नहीं, याद ग्रत का काम करती है। ग्रत का काम कौन कौन सी चीज करती है? बाबा की याद। याद ग्रत का काम करती है, याद रूपी ग्रत है। हर वक्त बाबा की याद रहे तो आत्मा की ज्योति सदा जगी रहेगी। याद रूपी ग्रत है तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है, किसी काम विकार पर ही झगड़ा होता है। तो बाप कहते हैं, मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, तो बाबा को भी भारत देश प्यारा लगता है। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, वैसे तो सब आत्माएं प्यारी है, लेकिन भारत देश विशेष प्यारा है क्योंकि भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। बाप को तो सब प्यारे हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो क्या हो जाता? तो सब मनुष्य मात्र क्या करते, सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। अगर शिव बाबा का नाम होता गीता में तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े से बड़ा मंदिर तो सोमनाथ का मंदिर था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं, सबसे जास्ती अगर मंदिर है भारत में वो शिव के। श्री कृष्ण के भी बहुत मंदिर है, लेकिन सबसे जास्ती मंदिर शिव के। किसी गांव में भी जाओ, वहां भी आपको शिव का मंदिर जरूर मिलेगा। तो श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है ही नहीं। शिव बाबा से जास्ती प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। जितना बेहद के बाप को मानते हैं तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है ही नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। शिव बाबा से हमारी प्रीत है तो शिव बाबा साकार तो है नहीं, तो कोई साकार की बात नहीं है। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल हाँ बाबा देखो फिर सावधानी देते हैं, आजकल आजकल करते करते क्या हो जाएगा, काल खा जाएगा। आजकल आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हो तो उस समय समझाना भी है, प्रोब माना प्रश्नावली। वो प्रश्नावली करते थे ना, गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन आदि आदि, तो वो प्रश्नावली उसको प्रोब कहते हैं। तो जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, खाली प्रश्नावली प्रश्न नहीं पूछने, समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वो बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं हाँ बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है, याद में ही। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाला बेहद के बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, कोई आपके घर में आए तो भी उनको ये समझाओ। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है ही पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो कर्म इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है, योग की सिद्धि है कर्म इंद्रियां शांत होना, तो जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तब तक इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, अब करो अपनी जांच, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है, कोई चंचलता तो चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो, अगर अपने को पक्का योगी कहलाते हैं तो ये भी जांच करनी है कि मेरी कोई कर्म इंद्री चंचलता तो नहीं करती। अगर मैं पक्का योगी हूं तो, ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो क्या होगा, अच्छे योगी बनेंगे, कहां भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी ये कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है ये जो सबको धोखा देती है, मुख्य भी उसमें भी मुख्य क्या है, आंखें, जो बहुत धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा, क्या महसूस होगा, जब योग में अवस्था जम जाएगी तो महसूस होगा कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। भले शरीर जवान होगा लेकिन क्या महसूसता आएगी कि हम तो जैसे जवानी में ही हमारी वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो, अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतनी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव हो जाएगा। क्या होगा, पहले तो कर्म इंद्रियां शांत होगी फिर मीठा स्वभाव हो जाएगा। फील होगा कि मैं पहले कितना कड़वा था, बाबा का बनने से पहले मैं कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे, अर्थात सबके साथ मुस्कुराना, ये प्यार की दृष्टि है। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये बाबा को श्राप नहीं दे रहे हैं लेकिन ये कर्मों की गुह्य गति बता रहे हैं। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसीलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं। बाबा से कितने कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं। बाबा बसंत बनकर ज्ञान रत्न लुटाते हैं बच्चों पर, कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। अब भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, वो लोग तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, हाँ बम बम भर दे झोली, ऐसे शंकर के आगे झोली पसारते हैं। अब उनको तो ये पता ही नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हाँ विनाश लाएगा, तो विनाश लाना माना सब खाली ना, सब छोड़ के जाना है, कुछ लेके थोड़ी जाएंगे विनाश में। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं कि शंकर झोली भरने वाला है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। कैसे झोली भरते हैं, किससे भरते हैं, ज्ञान रत्नों से। शिव बाबा भरते हैं, हाँ शंकर नहीं भरते। तुम भी रूप बसंत हो, हरेक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं। अब अपनी चेकिंग, कितना ज्ञान रत्न धारण कर और फिर ज्ञान डांस करते हैं, अथवा कितना रत्नों का दान करते हैं। तीनों ही बातें, अंदर विचार सागर मंथन करना, ये ज्ञान डांस करना है। पहले तो धारण करना है, वो बाबा की मुरली से धारण हो गए, फिर डांस करना अंदर ही मनन चिंतन, फिर उसका दान भी करना है, तीनों काम करना। तो अथवा रत्नों का दान कितना करते हैं, सबसे अच्छा रत्न कौन सा है, सबसे अच्छा रतन है मन मनाभव, सबसे अच्छा रतन है मन मनाभव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हैं, जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं, है ना। ये मुरली क्या है, बाबा के ज्ञान रत्न बाबा बच्चों को दे रहे हैं और हम बाप समान बनते जा रहे हैं। तो जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं, गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। पर ये तो है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है, तुम्हारा भी रूप बिंदी है, तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे डैश डैश डैश, हाँ जितनी धारणा करेंगे कराएंगे उतना बाबा के समान बनते जाएंगे। वो समझे हमारा ऊंच पद है, क्योंकि धारणा करेंगे कराएंगे तो वो समझे कि हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो और क्या होगा, बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना, रोज सर्विस करते, बाबा परम धाम से आते हैं बच्चों की सर्विस करने, मुरली चलाते हैं। अब देखो बाबा ने किसको याद किया है जो बहुत सर्विस करती है, बाबा भी रोज सर्विस करते हैं तो बाबा के सामने गुलजार दादी बैठी होगी, तो बाबा ने कहा देखो ये गुलजार बच्ची है कितना मीठा समझाती है। बाबा ने सुना होगा कितना मीठा समझाती है दादी गुलजार, जब लेक्चर देती थी बड़ी सभाओं में भी सब इतने आकर्षित होते हैं, दादी सिंपल बातें बताती थी लेकिन बहुत ही मीठे रूप से, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है, दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले, ऐसी टीचर हमको मिले। तो दादी गुलजार को भी बुलाते रहते थे, दादी आप आओ, उस समय दादी तो नहीं कहते थे, तो गुलजार दादी, दादी तो नहीं गुलजार बहन कहते थे, पर बाबा तो गुलजार बच्ची कहते। सबको पसंद आता है, दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले, ऐसी टीचर मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो जा नहीं सकती है, एक बहन का सब जगह जाएगी। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए, आपे ही शौक होना चाहिए, मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं, जो जो समझते हैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो शौक होना चाहिए जाना और सब सेंटरों पर जाना सेवा करना, ये शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा आऊं, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। उस समय तो कहाँ बहुत कम होता था, इतना कहाँ कोई सेंटरों पर चक्कर लगाते थे, अभी तो बहुत प्रोग्राम होते हैं, बहुत निमंत्रण मिलते हैं, तो बेचारे हमारी बहनें तो थकी जाती है, अभी और नहीं जाना कहीं, ऐसे कई कहते हैं क्योंकि बहुत निमंत्रण मिलते हैं। तो 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगाऊं, एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा, ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। किसी को जगाना अज्ञान नींद से, ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीव दान देते हो, ज्ञान दान देना ये जीवन दान है, ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। धंधे वाले ये न कहे मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, वो भी समय निकाल सेवा पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वो सर्विस बिगड़ तो रह भी नहीं सकेगा, मैं जाऊं सेवा करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, लेकिन फिर बाबा कहते श्रीमत लेना, ऐसे नहीं अपनी मन मत से सब करना है। बाप मदद भी करते हैं ना, बच्चों को बहुत रहम दिल भी बनना है, विचारों की बहुत दुखी जीवन है, रहम दिल बनकर सेवा करनी है। तुम जिए दान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है ही नहीं। कई प्रकार का दान बताते हैं ना, अन्नदान वस्त्रदान भूदान, कितने दान है, रक्तदान, सब दान है, लेकिन सबसे ऊंचा दान ज्ञान दान गुण दान शक्ति दान, ये सबसे ऊंचा, इसको महादान कहते हैं, बाकी सब दान। तो इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं, बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, जिन सेंटरों पर सर्विस ढीली है माना बाबा फिर ब्राह्मणी को दोष देते हैं, टीचर को दोष देते हैं, टीचर ढीली है इसीलिए सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है। तो ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसीलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए, कोई मदद मांगते हैं तो जरूर जाना चाहिए सेवा के लिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाकर आए, ऐसे कहें बाबा को। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे तो ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। हाँ, मुझे याद है एक बहन विदेश की बहन थी, वो बाबा के पास है, अव्यक्त बाबा के पास, और बाबा से पर्सनल तो मिलते ही थे, तो बाबा को कहती है बाबा हमारे सेंटर पर सर्विस नहीं है। तो बाबा ने कहा सेंटर पर सर्विस नहीं है, बाबा कोई नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, सेंटर से बाहर तुम जाओ, उस गांव में जाओ, वहां जाओ वहां जाओ, और वहां तुम सेवा करो, चलो जिस सेंटर पर रहती हो वहां नहीं है चलो माना, लेकिन तुम बाहर निकलो ना, बाहर निकलो और बहुत स्थान है जहाँ तुम सेवा करो, तो वहां जाकर सेवा करो। तो फिर वो हम तो ट्रांसलेशन करते थे ना बाबा की बातें, वो पूछते थे। तो कुछ फिर 2 साल के बाद वो आई, तो मैंने कहा देखो बाबा ने आपको श्रीमत दी थी, तुम बाहर निकलो। तो सचमुच कहती है बाबा ने जो कहा उसके आधार से मैं वहीं नहीं बैठी, मैं निकलती थी, हम निकलती थी और या कई जगह जाती थी और इतनी सेवा बढ़ गई जो बातें मत पूछो। नहीं तो यही कहते थे सेवा नहीं है, सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। कई बहनें आकर कंप्लेन करते हमारे सेंटर पर सेवा नहीं है, माना उनको ये समझ ही नहीं है कैसे सेवा करनी होती है। आत्माएं तो बहुत प्यासी है, तो इसीलिए कोई शिकायत न करे हमारे सेंटर पर सेवा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है तो बाप भी सबको जीवन, सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते। वास्तव में वंदे मातरम केवल धरती के लिए नहीं है, परंतु बाबा माताओं की महिमा गाते हैं, माताएं आज सच्ची उनकी वंदना है। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। ये तो पांच तत्व है, उनकी क्या वंदना करें। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा हो गई, पूजा करना हो गई बात, तो शरीर की पूजा करना वो हो गई भूत की पूजा, भूत पूजा। पांच तत्व तो भूत है ना, पंच महाभूत कहते हैं, तो जैसे भूत की पूजा हो गई अगर केवल धरती की पूजा करते हैं। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनका पूजा है, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। सबसे ऊंची पूजा शिव की पूजा, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वो है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से तो वो जास्ती पवित्र है। देवताओं की पूजा भी ऊंची पूजा है, शिव के बाद देवताओं की पूजा, फिर मनुष्यों की पूजा करते हैं। मनुष्य तो शरीर तो फिर भी पतित है ना, तो महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से भी वो जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं, बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंचा दान और कोई होता नहीं, एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, हरेक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा का भी चित्र और लक्ष्मी नारायण का भी चित्र लगा दे घर में तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, यहाँ ही वर्षा लेना है ना शिव बाबा से, सतयुग में तो नहीं जाके लेंगे न वहां देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो ये भी बड़ी सर्विस करते हो, बाबा को याद करते हो ये भी बड़ी सर्विस है। कैसे ये सर्विस है उस पर सोचना, लेकिन क्यों बाबा कहते हैं बाबा को याद करते हो ये भी सर्विस करते हो। आप वातावरण को तो शुद्ध बना रहे हो ना, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ बाबा के कमरे में जाते हैं इतना पावरफुल वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ सब बाबा की याद में होते हैं, तो वातावरण तो शुद्ध होता ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करते हो ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि भी सब पावन हो जाते हैं, योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वो सब क्या सिखाते हैं, जो योगाश्रम है वो क्या सिखाते हैं, जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। मूल बात है ही याद की, देखना है हमारा मन, फिर वही बाबा की पहली धारणा, हमारा मन कहां विकार तरफ तो नहीं जाता। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात विकारी माना पतित, अर्थात कौड़ी मिसल। विकारी है पतित, कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे, जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व न देखे, अपने को चेक करना है। हाँ, कोई कहे ना बाबा को क्या पता, बाबा थोड़ी देखता है। लेकिन बाबा कहते, बाबा देखे या न देखे, अपनी चेकिंग खुद करनी है, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं, कैसे अपने अवगुण निकालो। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। निर्गुण बालक की संस्था है तो निर्गुण का अर्थ भी नहीं समझते, समझते हैं ना, परमात्मा को निर्गुण कहते हैं, निर्गुण, निरंजन, निराकार, तो इसलिए उस हिसाब से वो निर्गुण संस्था पड़ी है। लेकिन निर्गुण का शाब्दिक अर्थ लो तो कोई भी गुण नहीं, और परमात्मा को जब निर्गुण कहते हैं तो इसका बहुत ऊंचा अर्थ है, जिनकी कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। लेकिन प्राकृतिक गुण कौन से होते हैं, सतो रजो तमो की स्थिति, ये प्राकृतिक गुण है। हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है, लेकिन परमात्मा ने इन तीनों गुणों से गुजरते, इसलिए निर्गुण। जो इन तीन गुणों से नहीं आए, माना तीन गुणों में न आए, वो निर्गुण। तो बाबा कहते दोनों अर्थ है, तो निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुणी न हो। बिगड़ अर्थ जो आया सो कह देते हैं, अनेक मते हैं ना, तुमको तो एक ही मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। हाँ, एक ही बाबा की मत मिलती है जिस पर हम चलते हैं, उसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्री मत पर अपनी ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की तो बात ही नहीं है, कोई लड़ाई करके नहीं हम जीत पाते हैं, लड़ाई की बात ही नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंट, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकता, हिंसा के बल से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकता। बाबा ने समझाया है ये दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण अभी ये बाबा राज समझाते हैं, क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हब किया, भारत को कितना लूटा अंग्रेजों ने, सब ने लूटा, जो भी आए भारत में कितना लूटा भारत को, लास्ट में क्रिश्चियन आए, अंग्रेज आए और भारत को खूब लूटा। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियंस ने ही कृष्णपुरी को हब किया है, असल में भारत श्री कृष्ण की ही पुरी थी ना, श्री कृष्णपुरी थी भारत। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है। कई आते हैं ना नेशनल कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज कैसे भारत में खोल रहे हैं, तो भारत में धन आ रहा है ना, तो बाबा कहते हैं अब वो धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। वो धन वापस आ जाएगा तो विश्व का मालिक बन जाते हो। तो बाबा कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वो आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। मक्खन श्री कृष्ण को वापस मिल जाता है। कितनी बड़ी बादशाही है, मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। अब संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है, वो बाबा ने वरदान में सुनाया। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस न हो, जरा भी देह अभिमान न हो, संकल्प में भी देह अभिमान न हो, उसको कहेंगे संपूर्ण समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। विजयी भव का वरदान देते हैं जो ऐसे पुरुषार्थी हैं। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। यह व्यक्ति शारीरिक अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अब उसके लिए क्या करना है, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। स्मृति, अपवित्रता और पवित्रता दोनों का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है, क्या स्मृति में रखो, ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो ये स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि ये फीमेल है, अब आत्मा है वो स्मृति, फिर ये फीमेल है ये स्मृति, ये स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे, देह को देखा तो रूप को देखेंगे, और आत्मा को देखा वहां रूहानियत को देखेंगे। तो रूप को न देख रूहानियत को देखो, तब संपूर्ण स्वच्छ पवित्र कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति। आज ओम शांति। आज हम सबके लिए बहुत ही प्यारा दिवस है। सतगुरुवार, जब जब सतगुरुवार की याद आती है, मन में खुशी, बाबा के साथ प्यार और बाबा से रूहान और बाबा से मिलन के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। अमृत वेले से लेकर बाबा से बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं। बाबा भी बच्चों की रूहान को सुनकर बहुत ही हर्षित होते हैं। तो सतगुरुवार हम बच्चों के लिए, वैसे तो हर रोज हम बच्चों के लिए विशेष दिन है, लेकिन सतगुरुवार जो है उस दिन हमें डबल खुशी होती है। क्यों? क्योंकि हम बाबा के सामने बैठ करके बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। हर रोज तो बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ इंडिविजुअल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गुरुवार के दिन संगठित रूप में हम सब मिलकर के बाबा को भोग स्वीकार करते हैं। और बाबा को भी अच्छा लगता है कि सब बच्चे वतन में आते हैं और बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज सतगुरुवार के दिन कौन वतन में जाएगा और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे? हाथ खड़ा करो। भट्टी वाले सब चाहेंगे कि नहीं? कि नहीं? जो कहेंगे नहीं, जो कहते ना हमारी याद बाबा को देना, आज आपको अपनी याद बाबा को देनी है ना। ये नहीं कहना हमारी याद बाबा को दो, आपको अपनी याद देनी है। और जो कुछ भी कहना है बाबा के सामने रखो और बाबा आपको उसका जवाब देंगे। तो आज हम सब बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन उस स्टैंड के पास होगी। और भट्टी के भाई हाथ खड़ा करें। भट्टी के भाई यहाँ बीच में आएंगे, बीच की लाइन बनाएंगे बीच में। और टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें। टीचर्स बहने इस ये जो कैमरा रखा है सेकंड कैमरा, इस कैमरा के पास आएंगे, उसके बाद भट्टी की माताएं और अन्य बहने 2 लाइनें होंगे अमृत पीने के लिए। लेकिन आप सबको ध्यान रखना है, धीरे धीरे साइलेंस में बाबा के प्यार में सब एक साथ इकट्ठे नहीं खड़े होंगे, धीरे धीरे सब लाइन में आएंगे और बहुत ही बाबा के प्यार में अमृत स्वीकार करेंगे। और अमृत स्वीकार करने के बाद जैसे सभी जाते हैं नाश्ते पर, अच्छा जो भाई बहने शांतिवन से आए वो हाथ खड़ा करें। शांतिवन से या अन्य किसी स्थान से आए भट्टी वालों को छोड़ के, और आप सभी को बता दें कि उधर डाइनिंग की तरफ थोड़ा कारोबार चल रहा है और वहाँ पर स्थान नहीं है, इसलिए सबको ध्यान खिंचवा रहे हैं सभी भाई बहने। भट्टी या शांतिवन या अन्य स्थान या कहीं से भी आए हुए हैं, सभी का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, सबको ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही जाना है। अच्छा, ओम शांति।
हरि भाव से जा बाबा की अनुसर
साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में एक तरफ बहुत सुंदर बहुत ऐसा सुंदर चमचमाता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी के आगमन के लिए पहले से ही कोई तैयारी की जाती है, लेकिन कुछ सेकंड उस अलौकिक वातावरण में अनुभव करते हुए मैं देख रही थी कि बाबा कहाँ है। बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे थे और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि दूर से एक सूर्यमुखी फ्लावर के फ्लावर जो है ना धीरे धीरे सूर्यमुखी फ्लावर नजदीक आता जा रहा है। नजदीक आने के बाद उस सूर्यमुखी फ्लावर में बाबा दिखाई दिए तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा आप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? बाबा ने कहा हर रोज बाबा बच्चों के पास चक्कर लगाते हैं, बच्चों को कई प्रकार के अनुभव कराते हैं, लेकिन आज के दिन बच्चों के स्नेह की भावनाएं और वो प्यार बाबा को बच्चों के प्रति आकर्षित करता है। तो अमृत वेले से ही बाबा बच्चों के पास पहुंचते हैं, एक एक का प्यार और रूहान के उनके रिटर्न भी देते हैं और फिर बाबा एक सेकंड शांत हो गए। फिर मेरे मन में उत्सुकता थी कि बाबा शांत क्यों हुए हैं। बाबा ने कहा बच्चों के साथ साथ बाबा ने सारे विश्व का भ्रमण किया कि परिवर्तन का कार्य कैसे चल रहा है, प्रकृति साइंस और एडवांस पार्टी के बच्चे तथा विश्व के ऐसी आत्माएं जो गुप्त रीति से परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं, उन सब का भी पास गए और बाबा देख रहे थे कि कार्य जो है तीव्र गति से तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से धीमी गति या कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें दिखाई दे रही थी। फिर बाबा शांत हुए। बाबा ने कहा कि ये कार्य की गुप्त मशीनरी बाप ने बच्चों को दी हुई है, बच्चों का गुप्त पुरुषार्थ ही इस कार्य को तीव्र गति से और जल्दी संपन्न करेगा। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा सबने याद दी है, जब तक मैं कहूँ, बाबा के सामने बहुत से बच्चे थे और बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। प्यार के साथ साथ बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई ऐसी डिब्बी दिखाई दे रही थी, तो मैं बाबा के हाथ में उस डिब्बी को देख रही थी और बाबा ने मुझे देख लिया, कहा बच्ची क्या देख रही हो। मैंने कहा बाबा ये क्या चीज है। बाबा ने कहा, बाबा बताते हैं, तो बाबा ने कहा कि आज वतन में कुछ बच्चे तो खुद आए हैं, कुछ को बाबा ने बुलाया है और कुछ का स्नेह उनको यहाँ खींच कर लाया है, तो बाबा बच्चों के लिए एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, वो सबके हाथ में वो गोल्डन डिब्बी पहुंची और बाबा ने कहा कि इस डिब्बी को खोलो, क्या है। तो जैसे ही उस डिब्बी को खोलने लगते हैं, उसका जो आगे का जगह थी खोलने के, वो खुलता ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से उसको दबा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। बाबा ने कहा इसके ऊपर फिर से हाथ लगाओ और अपने बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे वो बिंदी स्वरूप में स्थित हुए तो वो डब्बी खुलती, लेकिन उस डब्बी के अंदर एक बहुत चमचमाता हुआ ऐसा एंजल जैसा कोई फरिश्ता दिखाई दे रहा था। तो सब देखते हैं और कहते बहुत अच्छा फरिश्ता है। बाबा ने कहा नहीं, इसको खोलो, फिर से खोलो। तो उसको हाथ लगाते थे तो भी नहीं खुलता था। फिर बाबा ने कहा कि साक्षी और अंतर्मुखी स्टेज, उसमें दोनों तरफ लिखा हुआ था साक्षी और अंतर्मुखी। तो बाबा ने कहा कि साक्षी स्टेज पर खड़े हो जाओ और अंतर्मुखी होकर के अपनी आंतरिक स्टेज को एक रस बनाओ। तो जैसे उसको खोल के किया तो एक बहुत सुंदर कवच की तरह से फरिश्ता का कवच दिखाई दे रहा था और वो कवच ऐसा था, ऊपर था बाबा का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और उसमें से लाइट निकलती थी और उस लाइट से फरिश्ते जैसा एक बहुत सुंदर कवच बन गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं अचानक ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों में बच्चों की कभी तो स्टेज स्टेबल होती है, कई बच्चे हलचल में आ जाते हैं, कई बच्चे क्वेश्चंस करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी समय अनुसार बाप की प्रत्यक्षता के लिए क्या करना है। तो बाबा ने कहा एक फरिश्ता स्वरूप का कवच डाल करके अंतवाहक रूप के द्वारा सारे विश्व को अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा इसके लिए बच्चों को बार बार अपनी उस स्थिति का अनुभव पक्का करना है, आत्मा बिंदु स्वरूप शक्तिशाली, आत्मा ही सब कुछ, एक रस स्टेज और मैं आत्मा ही बाप के कार्य में राइट हैंड हूँ। फिर बाबा ने कहा कि हर कार्य को, हर परिस्थिति को साक्षी होकर के देखें और बाप का साथ भी है, सर्वशक्तिवान बाप है, तो जब इस स्थिति में रहेंगे तो सबको अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा ईष्ट का भी अनुभव कराएंगे। और विशेष जो है कि बाबा और ब्रह्मा, बाप दादा, कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि बाबा की प्रत्यक्षता, तो आज बाबा कह रहे थे कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि दोनों की प्रत्यक्षता से ही लोग अनुभव कर सकेंगे, नहीं तो बिंदी लाइट को देखते हैं ना तो वो अनुभव नहीं करते हैं। तो बाबा में ही शिव बाबा की लाइट उनको दिखाई दे, ऐसा दिखाए। तो फिर बाबा ने ना वो डिब्बे के साथ साथ एक सुंदर सा स्लोगन था, और स्लोगन के ऊपर ऐसा कुछ दिखाए जैसे झंडा होता है, झंडा होता ना शिव बाबा का, तो वो दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने उसे बच्चों के हाथ में दिया, और वो स्लोगन भी था कि हम सब परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था परमात्मा हमारा पिता साथी सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने कहा हर आत्मा ये अनुभव करे कि परमात्मा ही हमारा पिता है, वही हमको शांति देने वाला है, बाप की प्रत्यक्षता का जैसे झंडा बच्चों को लहराना है। तो फिर बाबा ने वो डिब्बी दिया, और वो स्लोगन झंडे जैसा स्लोगन था वो सब बच्चों को दिया, और बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष अभी एक बात का ध्यान रखना है कि हर समय बाप ने जो फरिश्ता स्वरूप का कवच दिया है उसको बीच बीच में उसका अभ्यास करें, और विश्व की आत्माओं को ऐसी किरणें दे कि उन्हें अनुभव हो कि परमात्मा ने, पिता ने हमारी पुकार सुन ली है। फिर बाबा के सामने सारे बच्चे थे, फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज भट्टी वाले भी आए हैं खास विले पार्ले से। जैसे मैंने बोला विले पार्ले, तो बाबा कहते क्या विल पावर वाले है या नहीं। मैंने कहा बाबा और भी स्थानों से आए हैं। बाबा ने कहा नाम एक बोला, अन्य किसी भी स्थान से जो बच्चे चाहे भट्टी के हैं, चाहे बाबा के पास आए हैं, चाहे वतन में आए हैं, चाहे देश विदेश में हैं, चाहे अन्य स्थानों से आए हैं, तो बाबा कहते हैं अभी सभी बच्चों को अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाना है, विल पावर स्ट्रांग है, तो बच्चे हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे, दृष्टि के साथ साथ बाबा ने उस डब्बे के साथ एक छोटा सा गोल्डन चमकता हुआ स्टार दिया, और वो स्टार ऐसा स्ट्रांग था उसके आगे विल पावर लिखा हुआ था। बाबा ने कहा आज बाबा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ हो, लेकिन अपनी शक्ति को कमजोर नहीं करना है, सदा मजबूत स्ट्रांग। और बाबा को कोई भी बात आती है बाबा को विल कर दें, और अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करें जैसे साकार ने सब कुछ विल करके क्या किया, इतने हल्के हो गए, हर कार्य सहज होता गया। तो बाबा ने कहा कुछ भी परिस्थिति है उसको बाबा के सामने विल करो और स्ट्रांग विल पावर वाले बनते जाओ। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, भोग के बाद फिर मैंने बाबा को कहा बाबा आज बहुत से भाई बहनों ने विशेष भोग के निमित्त याद किया। बाबा ने सबको इमर्ज किया, इमर्ज करते हुए सबको दृष्टि के द्वारा वरदान दे रहे थे। बाबा ने कहा साक्षी होकर के, बिंदी लगा करके, ड्रामा के हर सीन को ऐसे देखते चलो कि जैसे हर सीन में कुछ न कुछ और प्राप्ति समाई हुई है, किसी के भी निमित्त है, उसको भी शक्ति देते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी योगदान देते रहें। फिर सबको याद दिया, ओम शांति।